ओम शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स का आज शांतिवन कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी ने कल बहुत अच्छा एडमिन कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल सेशन अटेंड किया, जिसमें कई वरिष्ठ भाई बहनों के आपने व्याख्यान सुने और आज से आपका सेशंस शुरू हो रहे हैं। जो फर्स्ट सेशन है आपका इंटरैक्टिव सेशन, मेडिटेशन फॉर डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, आज भी बहुत सुंदर आप अनुभव सुनेंगे, व्याख्यान सुनेंगे। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ आज के हमारे अतिथिगणों को। सबसे पहले आदरणीय राजयोगिनी, आदरणीय वीना दीदी जी को एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। दीदी जी का, आप कर्नाटका सिरसी से हैं और आज हम दीदी के बहुत सुंदर व्याख्यान सुनेंगे। और हमारे बीच में सिंगरौली से संजीव कुमार भाई जी भी हैं। अगर सभा में जहां कहीं भी हो, भाई जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से भाई जी का स्वागत सम्मान करेंगे जी। जी, मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगी कि हमारी अतिथि गणों का तिलक और बैज द्वारा स्वागत और सम्मान करेंगे। सभी तालियों से, उमंग उत्साह से आज का ये सेशन शुरू करेंगे। आज हमारा बहुत सुंदर विषय है अपनी प्रशासन को। वैसे तो हम सभी बेहतर अपना प्रशासन करते ही हैं, लेकिन प्रशासन में और बेटरनेस लाने के लिए और इफेक्टिवनेस लाने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर हम मेडिटेशन को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, रूटीन में ऐड करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने परिवार का, अपने वर्कप्लेस का, अपने सबॉर्डिनेट्स का बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप सभी वो लकीस्ट भाई बहन हैं जो परमात्मा के घर में आज पधारे हुए हैं। तो बेहतर प्रशासन के लिए हमें जरूरत है मेडिटेशन की। जब हम मेडिटेशन को करते हैं तो हम सेल्फ को मैनेज अच्छे से कर पाते हैं। अगर जो व्यक्ति सेल्फ को अच्छे से मैनेज कर सकता है, अपने आप को मैनेज कर सकता है, तो वो हर चीज को अच्छे से मैनेज कर सकता है। और प्रशासन, खुद पर शासन करना बहुत जरूरत है। वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि समय ऐसा है, परिस्थितियां ऐसा है, वातावरण ऐसा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति डाउनफॉल महसूस करता है, मन से थोड़ा डाउन हो जाता है, इसलिए जब हम मेडिटेशन को अपने जीवन का पार्ट बनाते हैं तो 100% हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे सेल्फ का हो, परिवार का हो और अपने वर्क प्लेस का हो, बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज इस विषय पर हम और भी व्याख्यान अनुभव सुनेंगे। तो हमारी दीदी जी आज पधारे हुए हैं, वीना दीदी जी, तो मैं उनका संक्षिप्त में आपको परिचय देना चाहूंगी। हमारी दीदी ब्रह्मा कुमारी सिरसी कर्नाटका के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के जोनल डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आप 47 वर्षों से इस संस्था में सरेंडर रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप राजीव का एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के एक्टिव एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन रिफ्रेशर कोर्स एंड रिट्रीट्स की आप स्पीकर हैं। आप कई टीवी चैनल्स के स्पीकर भी हैं। आपके 360 एपिसोड्स श्रीमद् भगवद गीता के टेलीकास्ट होते हैं, अपना जो पीस ऑफ माइंड चैनल है ब्रह्मा कुमारी का, उस पर आप ब्रह्मा कुमारी वैल्यू एजुकेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के ट्रेनर हैं। आपने भारत के विभिन्न स्थानों पर जैसे चंडीगढ़, मैसूर, बेंगलोर, नागपुर, ओआरसी दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, ऐसे कई स्थानों पर आप ट्रेनिंग कार्यक्रम कराते रहते हैं और ऐसे विशेष हस्ती आज हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियों से पुनः दीदी जी का स्वागत करेंगे। और बहुत प्यार से धैर्य पूर्वक आज हम दीदी जी को सुनेंगे और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने आप को और बेहतर बनाएंगे। तो आगे दीदी जी को मैं देती हूं। ओम शांति।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का मॉर्निंग गुड है। बारिश के कारण डल तो नहीं है? बारिश ने आपको खुशी दिया या क्या दिया? किसको लगा कि बारिश खुशी दे रही है? बहुत अच्छा। किसी ने खूब कहा है, ट्रेनिंग इज लाइक रेनिंग विच ब्रिंग्स ग्रीनरी इन एवरीबडीज लाइफ, है ना? दोनों का कंपैरिजन बहुत अच्छा है। हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, मेडिटेशन के बारे में सुनने बैठे हैं, बाहर प्रकृति अपनी खूबी दिखा रही है, तो इसका भी आनंद लेते हुए हमने अपने अपने जगह पर बारिश को देखा है। आज अरावली पर्वत श्रेणी की बारिश को भी देख लेंगे और कैसा, कितना सुंदर नजारा है, इसका आनंद लेते हुए आज का जो हमारा सेशन है, मेडिटेशन फॉर डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, प्रशासन में जो विशेषताएं, कुशलताएं चाहिए उसे डेवलप करने में मेडिटेशन हमारा क्या मदद कर सकता है, इसके बारे में कल तो अनुभवी वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें बताई है। उनको उनके एडमिनिस्ट्रेशन में मेडिटेशन कैसे काम आती है, कैसे काम लेते हैं और मेडिटेशन माना क्या है, बहुत अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन वक्ता गणों का हमने कल सुना है। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में और गहराई से सुनेंगे। पहले मैं आपको संक्षिप्त में, हम कोई दुनियावी एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें जैसे कल आशा दीदी ने कहा था कि बहुत सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर सिखाया जाता है, क्योंकि सेल्फ सॉवरेंसी से और सब कुछ हो सकता है। इसके लिए आजकल दुनिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स की बातें होती हैं, वो क्या क्या स्किल्स हैं, उसका एक रफली हम उसको देख लेंगे, उसके बाद में हम मेडिटेशन से उसमें क्या लाभ ले सकते हैं इसके बारे में चिंतन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स में पहला होता है कि स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कल जयंती दीदी कह रही थी, इट इज लाइक अ पिरामिड, है ना? एक टॉप पे रहता है, नीचे के लोगों तक उसको पहुंचना होता है। और वहां कौन इंपॉर्टेंट है? एडमिनिस्ट्रेटर इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिशियन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? हम हर कोई अपनी ईगो में रहते, ब्यूरोक्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिशियंस बोलते हम इंपॉर्टेंट, पब्लिक बोलते अगर हम नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, लेकिन हर कोई अपने अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। सब मिलके चलेंगे तभी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकेंगे। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है ना। मैंने यहां पर जब से मैं ब्रह्मा कुमारी बनी तब से यहां पर हमारी दादी प्रकाशमणि जी की एडमिनिस्ट्रेशन देखा हम लोगों ने। वो कोई आईएएस नहीं थी या मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में कोई उन्होंने डिग्रीज नहीं ली थी, लेकिन जो परमात्मा ने उनको सिखाया था स्किल्स, एक इतनी बड़ी संस्था है ना, यहां पर कोई हर कोई ग्रेजुएट नहीं है, हर कोई स्किल्ड नहीं है, रॉ से लेकर स्किल तक सब है यहां पर, हर भाषा के लोग हैं। इन सभी को मिला के चलना, ऑर्गेनाइजेशन को एक फैमिली बना लेना क्या होता है, और एक फैमिली वैल्यूज को डेवलप करते हुए पूरी दुनिया को एक वसुधैव कुटुंबम में परिवर्तन करना क्या होता है, ये हमने उनसे सीखा। सबको अपना मान के चलना, जितना विश्वास है उतना अनुशासन भी सिखाना, ऐसे नहीं कि केवल प्यार करते चलना, अनुशासित रूप से प्यार को कैसे सिखाना, ये पहला है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। आजकल सोशल मीडिया के कारण कम्युनिकेशन बहुत वीक हो गया है। हम सोचते हैं बेहतर हो गया है, कहां भी बैठे लोगों को हम ट्रैक भी कर सकते, पहुंच भी सकते हैं, लेकिन जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन था है ना, वो बहुत कम हो गया। जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता था एक ह्यूमन टच होता था वहां पर, अभी कोई ह्यूमन टच नहीं रहा, जैसे कि रोबोटिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, रोबोटिक स्किल्स हो गए हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि दुनियावी स्किल्स के बारे में तो दुनिया में हर कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेनिंग देता रहता है। तीसरा है टीम वर्क। एडमिनिस्ट्रेशन एक टीम वर्क है। जैसे हम दुनिया में कहते हैं अगर आपको बूंदी के लड्डू बनाने के लिए कहा जाए और आपको कहा जाए केवल एक उंगली का इस्तेमाल करना है तो बना सकेंगे लड्डू बनेगा। अगर बूंदी की लड्डू बनानी है आपको, पांचों उंगली साथ में मिल जाए तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हम एक एक लड्डू बना बना के रख देंगे, है ना। ऐसे केवल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, लाइफ इज ऑल्सो ए टीम वर्क, जिंदगी ही एक टीम वर्क है। इसके साथ टीम वर्क के साथ क्या चाहिए, इंस्पिरेशनल स्किल्स चाहिए। कोई सोया सोया हुआ है, कोई बुझा बुझा सा है, उसको भी इंस्पायर करके काम लेना पड़ता है। इंस्पायर कैसे किया जाए, जब तक हम अंदर से इंस्पायर नहीं होंगे तब दूसरों को हम इंस्पिरेशन नहीं दे सकेंगे। केवल सीट इंस्पिरेशन नहीं करता है, आपका पोस्ट इंस्पिरेशन नहीं करता है, लेकिन आपकी खुद की जो क्वालिटी है इंस्पिरेशन, वो दूसरों को इंस्पिरेशन दिलाता है। चौथा है सर्विस स्किल्स। देखिए दुनिया में कितने भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना हो, वो साइन क्या करता है, इन गवर्नमेंट सर्विस है ना, वो सर्विस, वो पेमेंट लेता है, सब कुछ करते हुए वो जो करता है वो सर्विस है, ये व्यापार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट बिजनेस। यहां ले दे के कुछ सीख नहीं कर सकते, यहां क्या चाहिए, एक सर्विस मोटो चाहिए, तब हमारे अंदर सर्विस। आप यहां पर देखेंगे यहां की सर्विस स्किल्स आप देख रहे हैं, यहां कोई पेड नहीं है, यहां सब वॉलंटियर्स हैं, लेकिन खुशी खुशी अपनी ड्यूटी कल रात को 12 बजे तक भी किए होंगे, आज सवेरे 4 बजे फिर हाजिर हो जाएंगे, वही मुस्कुराते हुए चेहरे लेके, वही सर्विस के माइंडसेट लेके। क्यों? क्योंकि उनको सर्विस का बेनिफिट पता है, वो सर्विस को एक बोझ नहीं समझते, वो सर्विस को एक एहसान नहीं समझते। हमने आपके सेवा की, आपका एहसान किया, ऐसे नहीं समझते, वो सर्विस को, सेवा को एक भाग्य समझते। यहां पर जो भी सेवाएं करते हैं वो हर कोई यहां सेवा को भाग्य समझते हैं। इसके लिए ये स्किल अपने आप में बहुत कुछ करा देता है। और पांचवा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आजकल एक स्लोगन है, हम भगवान से क्या बोलते हैं, बाबा भगवान आज कोई कष्ट नहीं देना, कष्ट से हम थक गए हैं। लेकिन भगवान क्या कहता है, मेरे पास कष्ट ही कष्ट है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, इसलिए तू वो मत पूछना मेरे से। तो क्या स्किल चाहिए हमें, भगवान के पास भी, आपके पास सॉल्यूशन, भगवान हर एक का सॉल्यूशन वो नहीं दे सकता। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इनबिल्ट है, हर मनुष्य के अंदर इनबिल्ट कैपेसिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अगर हम प्रॉब्लम ही नहीं फेस करेंगे तो सॉल्विंग कैसे करेंगे, उसका निवारण कैसे करेंगे। केवल थीसिस से कुछ नहीं होता, केवल पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता। आप सभी को भी, कितने भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हैं, आपने पढ़ा कुछ और है, प्रैक्टिकल में कुछ और ही होता है ना, इसी तरह। और छठा है टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स, बदलती दुनिया में ये भी जरूरी है। हम पुराने जमाने के कागज और पेंसिल लेके काम नहीं कर सकते, हमें चाहिए, लेकिन कितने हद तक वो भी तो हमें सोचना पड़ता है। और सेवेंथ वन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आ गए यहां पर ह्यूमन स्किल्स पर, यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आज दुनिया में बहुत कम देखने को मिल रहा है। सच है कि नहीं है, बताइए। आज दुनिया में मैं केवल एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात नहीं करूंगी, आज स्टूडेंट्स की बात ले लीजिए आप, स्टूडेंट्स कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो कहते हैं एग्जाम में हम मार्क्स क्यों, हम कम क्यों नहीं लिए, सिलेबस ठीक नहीं था, लेक्चरर्स ठीक नहीं थे, हमारी इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटीज कम थे, हमें समय पर सिखाया नहीं गया। हर समस्या की रिस्पॉन्सिबल दूसरे को ठहराने की आदत हो गई है आज। मैं बताऊं आपको ये कहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं ले रहे हैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको एक छोटी सी साइकोलॉजी सुनाती हूं। जैसे माँ, आप बहुत सारी माताएं बैठी है, आपके छोटे छोटे बच्चे जब छोटे होते, बहुत छोटे, अभी चलना सीख रहे होंगे, चलते चलते चलते, आपने देखा है ना, छोटे बच्चे जब नए नए चलना सीखते हैं तो फास्ट चलते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते जाना इधर होता है, चल पड़ते इस तरफ, और चलते चलते उनका पैर ऐसा हो जाता और गिर जाते हो, बैलेंस नहीं होता। जब बच्चा गिरता है तो रोने लगता है, तो माँ क्या करती है, बच्चे को रोना रुकवाना है, सांत्वना देना है, तो माँ क्या करती है, जनरली बच्चे को उठाती है और जो जिस जमीन पर बच्चा गिरा उस जमीन को क्या करती है ना, कि देख इसको आंख नहीं है, तेरे को गिरा दिया इस जमीन ने, मैं इसको दो पिटाई करूंगी, ऐसे करके टक टक दो पिटाई करती है, बच्चा खुश हो जाता है कि नहीं। ये बताइए माताएं यही करती है ना, 99% बहुत आसान तरीका है बच्चे को चुप कराने का। बट क्या ये सही है, कभी सोचा है, बच्चे का गिरने का कारण जमीन नहीं था, जमीन नहीं था, छोटेपन में हमने बच्चे को एक गलत मार्गदर्शन दे दिया, तेरा गिरने का कारण जमीन है। आगे चलकर बच्चा सोचता है मेरे जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका कारण दूसरे है। समझ में आया, जैसे गिरने का कारण जमीन नहीं था लेकिन बच्चे को हमने सोच दिया गिरने का कारण जमीन है, और खुद के कारण को हम नहीं संभल पाए, ऐसे आगे सोचता है मेरे माँ बाप कारण है। मैं बहुत सारे काउंसलिंग कराती हूँ बच्चों की, आजकल बच्चे क्या कहते पता है, मैं डल हूं क्योंकि ये माँ बाप ठीक नहीं है, इनके यहां जन्म ही नहीं लेना चाहिए था मुझे, ऐसे माँ बाप के कारण मैं डल हूं। 90% स्टूडेंट्स का यही सोच है आज दुनिया में, ये मैं ऐसी नहीं बता रही हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुना रही हूं। क्यों, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, या घर हो, कहां भी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स को बढ़ाना है तो पहले क्या चाहिए, चलिए मैं आगे हूं आप मेरे साथ चलिए, ये चाहिए, इनिशिएशन लेना है। और आठवां है टाइम मैनेजमेंट। आजकल आप सभी को पता है बायोमेट्रिक लगा दिया है, जो भी आएगा वहां पर अपना थंब देगा। मैंने कई ऑफिस में देखा है थंब देके चले जाते हैं बाद में, सच है ये, मानते हैं कि नहीं थंब टाइम पे देना ही है, नहीं तो लीव मार्क हो जाएगी। तो वो आएंगे थंब देंगे और दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बता रही हूं आपको। और नाइन्थ है अटेंशन टू डिटेल, और टेंथ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्किल्स। आजकल मैंने भी देखा सुना, कल भी हम सुन रहे थे, मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन रिसोर्स कम किया जा रहा है, ज्यादा मशीन से या जो भी हमारी डिजिटल डेवलपमेंट है उससे काम लिया जा रहा है। लेकिन आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स जितना भी है अगर उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपका काम अटक जाएगा, अटक जाएगा, काम चलेगा नहीं। हंसी हंसी में मैं अपने एक एग्जाम्पल देती हूं, आप सभी ने सुना भी होगा, कई बार मैंने सुनाया भी है। हमारी, मैं कर्नाटक से हूं, कर्नाटका गवर्नमेंट की विधानसभा के ऊपर है ना, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि सरकारी काम भगवान का काम है, कन्नड़ में लिखा है मोटे मोटे अक्षरों में। इसके बारे में सोचे, उसके बारे में समझे, फिर खुद को इवॉल्व करें। यहां पर बहुत अच्छी तरह से दिखाया है कैसे हम उड़ सकते हैं फेलियर से। और आप याद रखिए, हम सोचते हैं हमें वो मदद करेंगे, ये मदद करेंगे, उनको हमने मदद किया है, समय पर वो हमारे काम आ जाएंगे। लेकिन यहां पर बहुत सुंदर एक लाइन दिखाया, पढ़ लीजिए। क्रिटिसाइज करने वाले कितने लोग हैं आपके जीवन में, गॉसिप करने वाले कितने लोग हैं, और आगे आप देखते चाहिए, आपको एनकरेज करने वालों के लाइन में कितने लोग आए, कितने आए जब आप थोड़ा उदास हो गए, आपको बहुत सारे बर्डन्स हैं। मैंने पहले से कहा था प्रमोशन नहीं ले, प्रमोशन लेने से यही होता, यहां ही बैठ जाता, काम तो कम होता, सैलरी तो मिल जाता, क्यों प्रमोशन लिया, है ना। एनकरेज करने वाले मिलेंगे या पैर खींचने वाले, पीछे हटाने वाले ही मिलेंगे। हेल्प करने वाले कितने मिलेंगे आपको, देखिए हेल्प करने वाले कितने मिल रहे थे, एक एक बंदा, वो भी मिला तो आपका तकदीर है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेडिटेशन हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को कैसे बढ़ाने में मदद करता है, मैं आज आपको ये स्पष्ट तरह से कुछ टिप्स देना चाहूंगी। वैसे आज आपने मेडिटेशन के फर्स्ट स्टेप तो सीखा होगा, सभी ने अटेंड किया था सवेरे का सेशन, सवेरे सेशन सभी ने अटेंड किया, रियलाइज किया। सुनना तो हम जन्मों से सीख के आए हैं, लेकिन अभी क्या करना है, हमें जो सुनी हुई बातें हैं उसको थोड़ा सा अप्लाई करना है, है ना। मेडिटेशन इज एप्लीकेशन। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, माइंडफुल लीडरशिप के लिए मेडिटेशन चाहिए हमें। देखिए अब ऑफिस, आपकी नौकरी छोड़ दीजिए, आपका घर है छोटा सा, उसमें चार लोग हैं, उसमें आप लीडर हैं, जितने भी भाई बैठे हैं आप सभी को पता होगा, आपका भी कोई हीरो रहा होगा, आप बता सकेंगे आपका पहला हीरो कौन है, आपके जीवन के पहले हीरो कौन है, कौन है, पापा। हर किसी का हीरो कौन होता है, पापा होता है। मैं आपको ऐसे हंसी में है ना बात सुनाती हूं। जब हम पढ़ रहे थे हमारी क्लास में, मैं समझती हूँ दूसरी या तीसरी कक्षा में, हमारी एक क्लासमेट लड़की थी, इतनी अभिमान से कहती थी, पता है मेरे पापा कितने बड़े हैं। मैंने कहा कितने बड़े हैं, मेरे पापा ना किस भी गाड़ी को ऐसे हाथ दिखाए वो रोक देता है। हमने सोचा पता नहीं कौन होगा इसका पापा। थोड़े बड़े हुए, नेक्स्ट क्लास में गए, तब पता चला उसका पापा ट्रैफिक पुलिस था, समझ में आया। लेकिन छोटी बच्ची को उसका पद कद कुछ नहीं पता, उसको क्या पता मेरा पापा जिस गाड़ी को भी हाथ दिखाएगा वो गाड़ी रुक जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के हाथ दिखाने से सभी गाड़ियां रुकती है, सीएमई क्यों ना हो, रुकना ही पड़ता है उसको। मतलब छोटे बच्चे को उसके पापा का पद क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, उसके मन में अपने पापा एक हीरो होता है कि नहीं होता है। इसी तरह हम सभी अपने अपने फैमिली में लीडर्स हैं, तो हमारे लीडरशिप में क्या होना जरूरी है, माइंडफुलनेस होना बहुत जरूरी है। आजकल दुनिया में हम बहुत थक गए हैं और फोकस कम हो गया, मेंटल क्लैरिटी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेस रिडक्शन चाहिए। मैं ये नहीं कहती स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, ये हवा में बातें करना होगा, स्ट्रेस फ्री मैं नहीं कहती हूं, मैं कहती हूं स्ट्रेस रिडक्शन हो सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है और इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ। इसलिए हम थोड़ा सा मेडिटेशन से ये कैसे बेनिफिट हो सकता है इसका सुनेंगे। पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन से हमको पता चलता है मुझे स्ट्रेस हो रहा है। मैं आपको बात सुनाती हूं, हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट हर ऑफिस में जाके कराते हैं हम बहनें। एक डिस्ट्रिक्ट है ना, हमारी वहां जिला पंचायत ऑफिस होती है, जिला पंचायत में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स करा रहे थे। साहब छुट्टी पे थे, सीईओ होते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वहां हमारे वहां जिला पंचायत में, एक आईएएस ऑफिसर होते हैं जनरली या प्रमोटेड होते हैं उनके लेवल के, उनकी छुट्टी में हम वहां पर एक हफ्ते का कोर्स करा रहे थे। लास्ट डे था फ्राइडे, फिफ्थ डे मैं गई कोर्स कराने। शाम के 4:30 बजे हम लोग जाते थे, एक घंटा कोर्स कराते थे। उस दिन साहब ऑफिस में थे तो मैं गई, पियोन ने मेरे से कहा दीदी आज साहब ऑफिस में मिलके जाओगे, मैंने कहा ठीक है, मैं साहब से मिलने गई। साहब ने कहा दीदी कैसे आना हुआ, फोन कर देते तो आपका काम कर देता। मैंने कहा नहीं भाई साहब, काम से नहीं आई हूं, ट्रेनिंग कराने आई हूं। किस बात की ट्रेनिंग, मैंने कहा ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो रहा है। किसके लिए, मैंने कहा आपके स्टाफ के लिए भाई साहब। तो उन्होंने कहा मेरे स्टाफ को कौन सा स्ट्रेस है, ये सब है ना आलसी है, कोई काम का करने का काम चोर है, सभी बहाना ढूंढते हैं, किसी को स्ट्रेस नहीं है दीदी, ये बहाना है। एक आधा घंटा मुझे लेक्चर दिया उन्होंने, बड़े साहब थे, मैं उनसे क्या आर्ग्यू करूं, चुपचाप सुन रही थी। उतने में क्या हुआ, एक भाई आया कोई डिपार्टमेंट का, एक फाइल लेके आया, पता नहीं कुछ काम दिया होगा। वो भाई जो लेके आया था वो रिटायरमेंट के करीब था, ये जो साहब थे 35 के अंदर 40 के अंदर थे। वो जो भाई आया हुआ था फाइल लेके, करीबन अभी 6 महीने बाकी था उसका रिटायरमेंट का, वो फाइल लेके आया। इन्होंने फाइल खोला, देखा कुछ गड़बड़ होगा, इतना गुस्सा आया फाइल फेंक दिया और सिंगुलर में एक वचन में गाली देना शुरू कर दिया उनको। वो भाई मुझे पहचानता था, आपको पता है ना ऐसे ही आप किसी को भी गाली दो वो सुन लेगा, किसी दूसरे के सामने आप उसको गाली दो उसको बहुत बुरा लगता है कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है बताइए। वो बेचारे का आंखों में आंसू आ गया, इतना बड़ा आदमी, इतना उम्र में बड़ा। फिर वो चुपचाप चला गया। वो जैसे चला गया ये साहब क्या बोले पता है, दीदी अभी तक मैं जो उनको डांट रहा था ये सब नाटक था, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया था। मैं सोचने लगी पहले वाला नाटक था ये अब वाला नाटक है, समझ में नहीं आया मुझे, मैं चुप रही। फिर बाद में मेरा लास्ट सेशन था, साहब भी आए, हमने लास्ट सेशन किया और हम आ गए। फिर 2 दिन बाद संडे थी, एक बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में मुझे कुछ काम था, मैं वहां गई हुई थी। वो पीएन वहां पर दिखाई दिया, अटेंडेंट। मैंने कहा तुम यहां क्यों, आज छुट्टी है। तो उसने बोला साहब एडमिटेड है। परसों तो मिली हूं मैं साहब से। तो बोला नहीं दीदी आप मिलके गए ना उसी दिन रात को, साहब को ना माइल्ड हार्ट अटैक हो गया, इसलिए साहब को एडमिट किया है। अभी वहां तक गई हूं, उनकी दरवाजे तक हूं, तो मैं मिलके जाने के लिए, मैं जिससे मैं उनसे मिलने गई ना, साहब को चेहरा देखने लायक था, उनको अंदर से कुछ हो रहा था, क्योंकि उन्होंने आधा घंटा मेरे से लेक्चर किया था कि किसी को स्ट्रेस होता ही नहीं है, स्ट्रेस एक रूमर है, स्ट्रेस एक भ्रम है। फिर मैं मिली, भाई साहब कोई नहीं कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, काम तो होता रहेगा, आपके बिना भी काम चलेगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो आपका जीवन चला जाएगा। बाद में जब मैं निकलने के लिए उठी तो उन्होंने बोला दीदी उस दिन मैंने आपसे आर्ग्यू किया था ना, नहीं डॉक्टर्स ने कहा कि मेरे ना दो ब्लॉकेजेस है, और डॉक्टर्स ने कहा है टेंशन के कारण ब्लॉकेजेस हुए हैं। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? जिस साहब ने स्ट्रेस को ही मना किया था, वो खुद के स्ट्रेस के कारण उनके कॉर्नरिस ब्लॉक हो गए थे। कहने का मतलब है हम अपने स्ट्रेस को जानते ही नहीं है, हमें स्ट्रेस है हम समझते नहीं है, हम सोचते ये जनरल है सभी को होता है, लेकिन नहीं ऐसे नहीं होता। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट मेडिटेशन से इतना आराम से, दो मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, कहते हैं 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज इक्वल टू 4 आवर्स स्लीप। 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज इक्वल टू 4 आवर्स स्लीप। और सेकेंड वन है थिंक पॉजिटिव। मेडिटेशन हमें पॉजिटिव सोचना सिखाता है, जो आजकल बहुत जरूरी है। हमारे दुख का मूल कारण है क्या क्या कारण है? ओवरथिंकिंग। इसलिए जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ओवरथिंकिंग कम होता है। पॉजिटिव सोचने का टेक्निक हमें मेडिटेशन से प्राप्त होता है। ये बहुत सुंदर बात है, दिमाग और छाता तभी काम करते जब वो खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। सच है कि नहीं है बताइए? हमें दिमाग तो भगवान ने दिया है, खुला है कि बंद है? आज छाता तो सभी को काम आया, अगर खुला नहीं होता तो छाता काम आता नहीं ना। इसलिए मेडिटेशन से हमारा दिमाग खुल जाता है, वो हमारे जीवन को सुधारने का काम करता है। और मेडिटेशन से सेकंड बेनिफिट है हमारा इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। हमारे डिसीजन निर्णय लेने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है। किस समय पर क्या निर्णय लेना है वो हम यथार्थ रूप से कर सकते हैं। जैसे कल भी हमने सुना कि गुस्से में निर्णय नहीं लेना है, हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेना है। हमने सुना है कि एक पापा शरीर छोड़ने के कगार पर थे, अपने बेटे को बुला के बोला, मैंने ज्यादा जायदाद तो नहीं बनाया लेकिन एक बात बोल के जाऊंगा। क्या बात है? तेरे को किसी को डांटना है, गाली देना है, गुस्सा करना है ना, तो जब लगता है गुस्सा करना है, डांटना है, गाली देना है, तो 24 घंटे के बाद करना। क्या बोल के गए? गुस्सा देना भले दे, गाली कर देना है भले दे, लेकिन कब देना है? आफ्टर 24 आवर्स, तब तक तो ठंडा हो जाता है कि नहीं है? इसलिए इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, यथार्थ निर्णय लेने की ताकत मेडिटेशन हमें प्रदान करती है। कूल माइंड से, आजकल के लड़के बहुत बार बिकूल यार ऐसे बोलते बहुत है, लेकिन कूल होते नहीं है। सच है कि नहीं है? इसलिए हमें अंदर से शांत, बाहर से एसी हमें ठंडाई देती है, लेकिन अंदर की ठंडाई शीतलता महसूस करने के लिए मेडिटेशन चाहिए। सक्सेस इज नॉट अ लक, इट इज गेम ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। सफलता कोई गेम नहीं है या केवल तकदीर नहीं है, तकदीर से सफलता नहीं मिलती है, ये एक खेल है। हमारी सहनशीलता और कठिन परिश्रम, मेहनत का नतीजा सफलता होता है। इसलिए डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो ए हार्ड वर्क, ऐसे इजी नहीं होता है। अरे साहब का क्या काम है, ग्रीन इंक से साइन करना ही तो है। लेकिन ग्रीन इंक से साइन करना भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डिसीजन मेकिंग है ना। इसमें क्या चाहिए? पेशेंस भी चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए। कुछ अच्छी बातें जो मुझे लगे वो मैंने आपके सामने रखा। देयर इज नो रॉयल रोड टू सक्सेस, बट आफ्टर सक्सेस एवरी रोड बिकम्स रॉयल। सफलता पाने के लिए कोई रॉयल रोड नहीं है, लेकिन सफलता पाने के बाद हर रोड आपको रॉयल लगता है, हर रोड रॉयल लगता है। तो सफलता पाने के लिए पेशेंस चाहिए, यथार्थ समय पर यथार्थ निर्णय चाहिए, उसके लिए हमें मेडिटेशन की जरूरत है। और मेडिटेशन से हम एनहेंस्ड वेल बीइंग, ठीक होना, अच्छा होना, एनहेंसमेंट सीखते हैं मेडिटेशन से। और कल्टिवेटिंग माइंडफुल लीडरशिप, नोबडी कैन मेक यू हैप्पी इफ यू आर नॉट हैप्पी इनसाइड। माइंडफुलनेस कहां से आता है, खुशी कहां से आती है? अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो बाहर से आपको कोई खुश नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कितना भी बंदर नचाओ आपके सामने, आपके अंदर ही सोया हुआ है, तो बंदर नाच देखने से खुशी नहीं आएगी। इसलिए अंदर से खुश रहने की कला हमें मेडिटेशन सिखाता है। बहुत सुंदर बात है, एवरी बैड मोमेंट गिव अ पेन, एवरी पेन गिव्स अ लेसन, एवरी लेसन चेंजेस अ पर्सन। हर बुरी घड़ी जो है ना, वो हमें दर्द दे जरूर देता है, लेकिन वो दर्द हमें कुछ पाठ सिखलाता है और वो पाठ हमारे जीवन को बदल देता है। इसलिए बुराई से हम डरे नहीं, अंदर से जब हम मेडिटेट करते हैं तो बुराई को अच्छाई में बदलने की ताकत हमारे अंदर आ जाता है, जरूर आ जाता है। बस सोच का ही फर्क है, सोच अच्छा हो तो हम देखिए, कई बार हम एग्जाम्पल देते, एक ग्लास में हाफ ग्लास पानी है तो दो नजरिए से देख सकते हैं, एक कह सकते ये आधा खाली है, एक कह सकते ये आधा फुल है, दोनों सही है, लेकिन हमारी नजर का फर्क है बस। इसी तरह से मेडिटेशन से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इंक्रीज्ड फोकस, हमारी फोकस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, व्हेन योर डे इज वंडरफुल चेरिश इट, व्हेन इट बिकम्स डिफिकल्ट स्टे स्ट्रांग। इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कल भी हम आईएएस ऑफिसर्स की बातें सुन रहे थे, उनका हर दिन एक जैसे नहीं होता। मैं आजकल किसी एक आईएएस कपल की बातें कुछ इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहे थे हम सोच के जाते हैं कल अच्छा गया आज भी अच्छा जाएगा, लेकिन आज जाते ही वहां पर सामने कोई भूत खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि कल जो अच्छा था आज भी अच्छा होगा मान के नहीं चल सकते, ऑफिस वही है, लोग वही है, लेकिन समस्याएं नए नए रूप से आती रहती है। इसलिए बहुत सुंदर बात है, दिन अच्छा है आनंद लो, अगर दिन बुरा है कठिन है थोड़ा स्ट्रांग रहो बस, और कुछ करना नहीं है तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। और मेडिटेशन एंड इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग, ये हम सीख सकते हैं। मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बट व्हाट यू डू आफ्टर मेडिटेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। समझ में आया, हमने अच्छा मेडिटेशन किया, ठीक है, बहुत अच्छा, एक घंटा बाहर गए, वहां आप चप्पल छोड़ के आए हैं बाहर, आपकी चप्पल जगह पर नहीं है, अब बताइए कैसे रिएक्ट करेंगे आप? यहां बहुत अच्छा मेडिटेशन करके बाहर गए, छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई आपकी नौकरी जाने वाले सवाल नहीं है, आपका जूता जो बाहर रख के आए वो जगह पर नहीं है, क्या करेंगे आप? अंजी टेंशन बढ़ जाएगा, अरे मेरे जूते पर किसकी नजर पड़ी, आज पता नहीं किसका चेहरा देख के आया था, जूता ही ले लिया, किसने ले लिया, अरे इधर उधर थोड़ा तो देखो, बाजू में सरक गया होगा, अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, चार कदम चल के जाते, हम जन्मते समय जूते पहन के नहीं आए थे, आए थे क्या, जाते समय जूते पहना के हमारा दफन दहन करते है क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्के से ले लो, वही पड़ा हुआ मिलेगा आपका जूता, कोई उठा के नहीं गया होगा, लेकिन थोड़ा सा जगह बदली हो गया। लेकिन मैं यही, यहां पर भगवान हमें यही सिखाते, मेडिटेशन करना जितना इंपॉर्टेंट है उसके बाद का इम्पैक्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम देखते घरों में एक एक घंटा पूजा करते हैं, बाद में इतना अच्छा डांट लगाते चिल्लाते घर वाले, वो उस आदमी को देखते ही मतलब ठंडा ठाकुर बन जाते, अरे इस आदमी के सामने तो मुंह खोलना ही नहीं है, वो घर नहीं रखता बंदीखाना बन जाता है, ऐसे नहीं माहौल चाहिए हमको। इसलिए मेडिटेशन हमें अंदर से शांत रहना, खुश रहना, खुद को संभालना सिखाता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पता नहीं कब तक दांत साथ दें, बाद में जब आपके दांत चले जाएंगे हंसने के लिए ऐसे मुंह बंद करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं है बताइए। जब हंसना चाहिए तब आपने हंसा नहीं। मैं हर जगह अपना एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, टाइम होता जा रहा है। कुछ 10 साल पहले मुझे एक बैंगलोर के लाफिंग क्लब में इनविटेशन मिला हुआ था। लाफिंग क्लब में एक आधा घंटा लाफिंग पर मुझे लेक्चर देना था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मुझे क्यूरियोसिटी थी ये लोग क्या करते देखना। तब नया नया खुल रहा था ना, अभी तो आजकल हर शहर में लॉफिंग क्लब खुल गए हैं। तो मैं वहां गई, बहुत बड़ा था क्लब, 100 मेंबर्स थे, एग्जैक्टली 5:30 प्रोग्राम था, 5:30 100 चेयर्स वर फुल, कोई भी खाली नहीं था। मैं गई, आधा घंटा मेरा लेक्चर था। आपको पता है ना, एक एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है हमारे अंदर, उसी के कारण हम क्रिएटिव भी एक्टिव भी रहते हैं। अगर हंसेंगे नहीं तो वो खुलेगा नहीं, तो जीवन सूना हो जाता है। और आपको पता है दुनिया में हंसने की ताकत एक मनुष्य में है, और कोई प्राणी में हंसने की ताकत भगवान ने नहीं रखी है, और आज तक कोई भी गवर्नमेंट ने हंसने पर टैक्स नहीं लगाई है। दो मिनट भगवान के साथ हंस लीजिए अभी, ठीक है। ओम शांति। अभी जो गाना बजा, कल भी आपने देखा इनॉग्रल सेशन के बीच में भी एक गाना बजा था 7:30। ब्रह्मा कुमारी संस्था में मेडिटेशन का एक मेथड है ट्रैफिक कंट्रोल। मन में जो ट्रैफिक होता है इसका बीच बीच में कंट्रोल करना। हमारी संस्था में 6 times फिक्स किए हुए हैं ट्रैफिक कंट्रोल के। उस समय पर गीत बजता है तो कैंपस में सभी अपने अपने जगह पे 1-2 मिनट के लिए मेडिटेट कर देते हैं। जैसे दुनिया में अगर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना, तो अगर यहां पर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया तो यहां भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसलिए ये मेथड ऑफ मेडिटेशन ट्रैफिक कंट्रोल, एकदम से 2 मिनट के अंदर आप इंट्रोवर्ट हो जाओ, अंदर चले जाओ, कितनी सुकून मिलती है, मिलते कि नहीं मिलते है? अच्छा लगा सभी को? आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने प्लेस पर। अच्छा, मैं लॉफिंग क्लब की बातें सुना रही थी। मैं गई, अपने मैंने उनको सुनाया कि कोई भी गवर्नमेंट ने अब तक टैक्स नहीं सुना लगाया, अभी हंस लीजिए, पता नहीं कल कोई गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, दो घंटे हंसने से इतना टैक्स देना पड़ेगा, फिर तो बहुत मुश्किल होगा। मेरा भाषण खत्म हो गया, मैं जाके पीछे बैठ गई। उन्होंने शुरू किया अपना, उनका एक घंटे का सेशन होता है हंसने का, एक लीडर होता है उनका हर महीने का, वो लीडर आके बैठता है, 5 मिनट अलग अलग तरीके से हंसना, हा 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 हू हू हे हे ऐसे 12 तरीके से हंसे सभी मिलके। फिर हंसी खत्म हो गई, सभी उठ के जाने लगे। मैं सबको देख रही थी, सभी एसी गाड़ी में आए थे, आते समय चेहरा पूरी तरह से पता नहीं किसी को डिशम करने जा रहे हैं, जाते समय भी ऐसे ही जा रहे थे। एक घंटे हंसे, आप सोचिए एक घंटे आप यहां बैठे हैं रिलैक्स, बाद में आपका मूड कैसे होगा, कितना खुला हुआ चेहरा, लूज है ना। ये लोग एक घंटे हंसे फिर भी चेहरे में कोई बदलाव नहीं, तो क्या फायदा। इसलिए जहां हंसना है ना वहां हंस लीजिए, पैसे देकर हंसने की मुसीबत नहीं आएगी फिर, है ना। जो भगवान ने फ्री में दिया है उसी के लिए भी पैसा देना, ये कौन सी तकदीर है। इसलिए मेडिटेशन हमें खुश रहना सिखाता है, क्या सिखाता है, कैसी भी परिस्थिति में खुशी ढूंढ लेना सिखाता है। जैसे मधुमक्खी कितनी भी गंदगी के बीच में एक फूल को ढूंढ ही लेता है ना, वो गंदगी के ऊपर बैठता नहीं है। इसी तरह मेडिटेशन करने वाला कैसे भी सिचुएशन में एक मोटिव ढूंढ ही लेता है खुश रहने का, और उसके कारण जीवन अच्छा लगता है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर, इट इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चित्र बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको अच्छा लगा। देखिए एक नीचे रिस्पॉन्सिबल पर्सन खड़ा है, एक दो मतलब बीच में ब्रिज टूटा हुआ है, इधर से उधर जाना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, नीचे खड़ा हुआ आदमी एक स्लैब लेके खड़ा है ताकि ऊपर वाला क्रॉस कर सके। इसलिए लीडरशिप माना बड़ा पावर, बड़ा पोजीशन, बड़े पैसे नहीं है, उसके साथ क्या आता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो खुश रहता है, ऐसा नहीं समझना रिस्पॉन्सिबल दुखी होता है। हमने हमारी संस्था की बड़ी दादियों में देखा है इतनी रिस्पॉन्सिबल होते हुए भी। मुझे याद है एक बार माउंट आबू में हम लोग ऊपर रहते थे, रात में जैसे कि बारिश आ गई, बहुत तूफान आ गया, हमको टेंट पर सुलाया था, टेंट में सुलाया था, टेंट उड़ गए सारे, बारिश ऊपर से ऊपर की ठंडी माइनस होने जा रहा था। और हमारी दादी, उनका उम्र 70 के करीब होगा, उसको उनको कोई बर्डन नहीं लगा, वो जैसे कि माँ अपने बच्चों के लिए उठ के आई, अपने पल्लू बांध के खड़ी हो गई, सभी को ले गई, अपने कमरे में भी जगह दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतना एंजॉय किया, और सवेरे बोली कि जब आप सभी सो गए ना तो मुझे सुकून की नींद आई। समझ में आया, जब आप सभी सो गए तभी मुझे सुकून की नींद आई। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन नहीं देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सच्चे दिल से निभाएंगे तो वो खुशी देता है। ये हमें मेडिटेशन सिखाता है। संगत का फर्क, पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, पर फर्क तो बस क्या है, संगत का है। तो हमें किसका संगत करना है, व्यक्तियों की संगत शायद हम चुन भी ना सके, क्योंकि जिस ऑफिस में आप डेप्यूटेड है, जिस घर में आप शादी करके रहे हैं वहीं रहना है, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ का संगत वो चेंज कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते, दैट इज मेडिटेशन। चूज योर कंपेनियन, गॉड एज योर कंपेनियन, भगवान को साथी बना लीजिए, तब देखिए संगत से आपका जीवन कितना अच्छा हो जाता है। ठीक है, टाइम इज लाइक अ रिवर, you cannot touch the same water twice, because the flow that has passed will never pass again. Enjoy every moment of your life, important hai. Jo pani beh gaya usko dobara aap touch nahi kar sakte, beh gaya to beh gaya, baad mein aap jis pani mein haath lagayenge wo dusra hi pani hoga. Lekin isliye jo moment hai na aapke paas, live in present. कल कल में नहीं जीना है, बीता हुआ कल आने वाला कल दोनों में नहीं जीना है, हमें आज में जीना है, आज के हर घड़ी को खुश बनाना है। यहां आए तो यहां का आनंद लेना है, यहां बैठ के कहीं का नहीं सोचना है, नहीं सोचना है ना। इसलिए जिंदगी हमें कर्म श्रेष्ठ कर्म करने की बातें बताती है। चॉइस मेड इन एंगर कैन रुइन योर लाइफ, ये मुझे कुछ अच्छे लगते हैं जिसको मैं कलेक्ट करके रखती हूं, अच्छा लगता है ये बातें। चॉइस मेड इन एंगर कैन रुइन योर लाइफ। ये क्या किया, गुस्सा आया, उस पंछी को पकड़ने के लिए कूदा तो खुद ही खलास हो गया। तो चलिए, जब हम अपने मन की दिशा बदलेंगे तो अब हमारे जीवन की दशा भी बदल जाएगी। मन की दिशा को बदलना ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन, कल बातें हो रही थी मेडिटेशन एज प्रोफेशन, डोंट टेक मेडिटेशन एज प्रोफेशन, लेकिन मेडिटेशन को लाइफ बना दीजिए, साथ में लेके चलिए। आपका प्रोफेशन कुछ भी हो लेकिन साथ में मेडिटेशन जरूर हो। दिशा को बदल देंगे तो दशा अपने आप बदल जाएंगे, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगी हम सभी अपने जीवन में जरूर मेडिटेट करें। मेडिटेशन में एक क्षमा भाव आता है, मेडिटेशन में एक ग्रेटिट्यूड आता है, थैंकफुलनेस आता है, मेडिटेशन में एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आता है, खुद को देखना आता है, मेडिटेशन में भगवान के साथ बातें करना होता है। जो किसी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते, हम भगवान से बातें शेयर कर सकते, तब यहाँ का बोझ कम हो जाता है। जब यहाँ से बोझ हल्का हो जाता है, हम हल्केपन से अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन। क्या है मेडिटेशन? ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन। खुद के ऊपर अटेंशन रखना, कोई टेंशन नहीं लेना, जो होना है होगा, लेकिन जो आज है वो कल नहीं होगा। इसलिए मैं आज जो है उसमें खुश रह के भगवान को साथी बना के चलूंगी चलूंगा, ये अपने आप से हम एक वादा करेंगे, ठीक है, मंजूर है। यहां से जाते समय आप मेडिटेशन का बोझ नहीं लेके जाइएगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि लोग सोचते मेडिटेशन है ना बुढ़ापे में करना चाहिए, लेकिन जब बदलने का मौका हो तभी मेडिटेशन मिले तो जीवन सुंदर नहीं बन जाएगा। बुढ़ापे में क्या पछताएंगे बैठ के, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? नहीं, ये नहीं कहती कि बुढ़ापे में करना नहीं चाहिए, लेकिन बचपन से अगर करते हैं तो बुढ़ापे में पछताने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, एक घंटे सुन रहे थे, अब मुझे आप बताइए, सुनी हुई बातें याद रहेगी आपको या देखी हुई बातें क्या याद रहेगी? मतलब अभी जो सुनाया सब वेस्ट? नहीं नहीं, थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन करें, सुनी हुई बातें कितनी याद रहेगी, ठीक है, मेरे साथ करेंगे आप सभी? ये है हेलो, ये है सलाम, ये है नमस्ते, सभी मेरे साथ करेंगे, जैसे मैं बोलूंगी वैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सबको समझ में आ गया, इसलिए मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगी, हम हर कोई लीडर बनना चाहते हैं, हम कोई मेडिटेशन सीखना इसलिए चाहते हैं, वी वांट टू बिकम अ लीडर। अ लीडर मस्ट बी ए गुड लिसनर फर्स्ट, अ लीडर मस्ट बी ए गुड लिसनर फर्स्ट। सुनना, ब्रह्मा कुमारी संस्था में इसलिए सुनने की कला सिखाते हैं, जिसको ही मुरली कहते हैं। हर रोज सुनना है आपको, सुनते सुनते बनना है, सुन सुनकर बनना है, सुन सुनकर उसको अपने अंदर समाना है। सुनते जाएंगे, 10 बार सुनेंगे तो उसको करने की प्रेरणा आएगी, और 10 बार सुनेंगे तो करने की ताकत आएगी, और 10 बार सुनेंगे तो करके जो भी आएगा सामना करने की, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की ताकत आएगी। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हो, लाइफ स्किल्स हो, सबको डेवलप करने के लिए भगवान के साथ जुड़ना, भगवान को याद करना, भगवान को साथी बनाना अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय दीदी जी को हम 45 मिनट से सुन रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम सुनते ही रहें। एक बार जोरदार तालियां दीदी जी के लिए, इतने अच्छे से आज के टॉपिक को दीदी ने क्लियर किया, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को एग्जांपल्स देकर दीदी ने हमें समझाया, और साथ ही दीदी ने बहुत सारी बेनिफिट्स बताए हमें मेडिटेशन की, कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारा डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाता है, हमारा इंटरनल हम बहुत कूल एंड काम रहते हैं, आपने बताया हमारा फोकस बहुत अच्छा हो जाता है, इमोशनली फिजिकली हम स्वस्थ रहते हैं, और साथ में आपने हमें बताया कि बहुत अच्छी लाइंस की 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन मीन्स 4 आवर्स ऑफ स्लीप। मतलब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बहुत कूल रहते हैं, हमें नींद भी अच्छी आती है और हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, साथ में खुश रहने के लिए टू रिमेन हैप्पी मेडिटेशन इज वेरी बेनिफिशियल, हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने हमें बताया कि हम परमात्मा को अगर कंपेनियन बनाते हैं, अपना साथी बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें हर परिस्थिति में परमात्मा की मदद मिलती है और हम सदैव खुश रहते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से आज दीदी ने हमको समझाया, पुनः दीदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया दीदी जी को। और हम सभी संकल्प करते हैं और दीदी को एक हाथ हिलाकर एश्योरेंस देते हैं कि हम इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे, करेंगे सभी हाथ उठा के दीदी जी को हम एश्योरेंस देंगे, एक बार जोरदार तालियां आपके संकल्प के लिए। अभी हमारे मंच पर आसीन हैं संजीव कुमार भाई जी, आदरणीय भ्राता जी, आप साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड हेडक्वार्टर बिलासपुर के माइनिंग जनरल मैनेजर हैं, साथ ही आप चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर CMD के कॉरपोरेट एंड टेक्निकल सर्विसेज को भी संभालते हैं, आप 27 ईयर से कोल माइंस में जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, साथ ही साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड क्वार्टरली अभिमन्यु ई मैगजीन के आप चीफ एडिटर हैं और आज हमारे मंच पर पधारे हुए हैं। मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि आज के विषय पर और अपने एक्सपीरियंस हम सभी के बीच में शेयर करें, आदरणीय भ्राता संजीव कुमार भाई जी।
धन्यवाद सुभा दीदी, परम आदरणीय बीके बिना दीदी जी, शोभा दीदी, यहाँ पे मैं कई लोगों को, सो मेनी डिग्निटरीज आर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ दिस हाउस, सो सभी उन महानुभाव व्यक्तियों का और यहाँ पे आए सारे प्रशासनिक जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने आए हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम, ओम शांति, सुप्रभात एवं ओम शांति। मैं जैसा कि शोभा दीदी ने बताया कि मैं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से बिलोंग करता हूं, ये कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, हम लोग एक पूरे 10 लोग का टीम आए हैं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से और एक NCL से भी करीब 10 लोग की टीम आई है, दोनों एक सब्सिडरी कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और उसके साथ सब्सिडरी कंपनी कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी कंपनी है जिसके हम लोग, जिसमें हम लोग एम्प्लॉयड हैं। यहाँ पे जस्ट ये भी बताना चाहूंगा कि कोल इंडिया लिमिटेड हमारी जो होल्डिंग कंपनी है वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉय करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है पूरे इंडिया में, और 70% जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें पूरे देश का कोल वो कोयला से ही होता है। हालांकि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा था कि सोलर का काफी कंट्रीब्यूशन है, तो अगर इस तरह से बात करें तो वी कैन से डैट वी आर द पीपुल who keep our nation lighted and Brahma Kumaris, and if I can associate with Brahma Kumari, then I can say that Brahma Kumari, Rajyoga Brahma Kumari organization is also keeping the souls, our souls lighted. So there is a conspicuous similarities I see in this way, that I keep, we are the people who keep the keep our nations lighted, and you are the people, madam and Didi, who keep the souls of the whole of this world. Because I kal sun raha tha ki ek kareeb 110 country mein Brahma Kumari ka spread hai, aur yahan pe to hai hi kaafi, aur ye sabse badi baat hai ki ye women empowerment ka ek symbol hai. Aaj ke date mein मैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल में भी, हम लोग भी एक इनिशिएटिव लिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा, कि जिसमें कि हम लोग को बोला गया है, सारे पब्लिक सेक्टर को, इवन प्राइवेट सेक्टर को भी बोला गया होगा, कि सारे ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से बनाइए कि जिसमें कुछ एक पार्ट हो, कुछ में एक विंग हो, एक सेक्शन हो जो फुल्ली वोमेन रन हो. और हम लोगों ने, मैं आपको ये शेयर करते खुशी भी होता है कि हम लोगों ने जुलाई में एक बसंत विहार डिस्पेंसरी है, उसका हम लोगों ने इनॉग्रेट कराया एससीसीएल, जो कि फुल्ली जो है वोमेन फीमेल रन डिस्पेंसरी है. उसमें सारे डॉक्टर, सारे मेडिकल स्टाफ या पारा मेडिकल स्टाफ जो भी हैं, वो सारे फीमेल के द्वारा रन होते हैं. उसी तरह एक सेंट्रल वर्कशॉप है हमारा कोरबा का, वो भी जो है उसको भी फुल्ली वोमेन रन बनाया गया है, वोमेन फीमेल रन किया गया है. और इसके बाद हम लोग का एसीसीएल का प्लस कोल इंडिया का इवेंट्स, अदर पब्लिक सेक्टर जो एनटीपीसी वगैरह से आए हैं, उनका भी ये मिशन है कि कई सारे जो टोटली जो फीमेल, इवन जो है माइंस अगर हम लोग चला रहे हैं तो वो भी कम्प्लीटली कुछ ऐसा माइंस करें जो कि टोटली फीमेल रन हो. तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है. और यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ जो ब्रह्म कुमारी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें मेनली फीमेल के द्वारा ही रन होता है और इतने अच्छे से मैनेज होता है. और मैं जस्ट दीदी का जस्ट ये सुन रहा था, कल भी कई सारा सुना, तो मैं जो इनके द्वारा जो सुना और या कल के वक्ताओं के द्वारा जो सुना, और मैं मुझे पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक है, मैं काफ़ी कुछ मैनेजमेंट या की बुक पढ़ता भी हूँ और लिखने का भी कोशिश करता हूँ, तो सारे को मैं रिलेट जब कर पा रहा था, तो कहीं ना कहीं हरेक जो वक्त है, हरेक जो स्टेटमेंट है, वो कहीं ना कहीं मेरे को वो रेमिनिसेंस में ले जा रहा था, कि मैं उसको रिलेट कर रहा था. कभी जैसे जिम कॉलिन का गुड टू ग्रेट, या सेवन ग्रेट हैबिट्स ऑफ स्टीफन कोविन, या जो है ये कई सारे बुक्स का जो है कार्ल न्यूपोर्ट का जो है डीप वर्क, तो ये सारे लोग, सारे जो इतने सारे जो बुक हैं उसको कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पा रहा था. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिस इज ए, जैसे जस्ट उषा मैडम सुबह में बोल रही थी कि वी आर इन द इंफॉर्मेशन एज, लेकिन वो हम लोग जो जिसको, बट इट इज ऑल्सो ए डिसएडवांटेज साइड इसका ये है कि वी आर लोडेड विथ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन एवरी आवर्स, that it is getting clutter. So this is the information which we are getting every second is not the knowledge. We have to differentiate between the information and the knowledge. So इसलिए जो बोलते हैं कि हम लोग को भी जो, अगर इस तरह से जैसे हम लोग जो मैनेजमेंट सीखने आए हैं या एडमिनिस्ट्रेशन सीखने आए हैं, आप लोग सभी डे टू डे वर्क में इसको देखते भी होंगे कि हम लोग का अनप्रोडक्टिव जॉब में, अनप्रोडक्टिव कार्य में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, जिसको हम लोग को, मेरे को लगता है कि शेड्यूलिंग करने की आवश्यकता है या उसको प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है. जैसे कि हमारे पास दुनिया भर के ईमेल आते हैं, ई ऑफिस का आता है, दुनिया भर के फोन्स कॉल आते हैं, जिसको कि जो हमारे लिए मोस्ट ऑफ द, मैंने 50-60% तो वो जो होता है वो एक तरह से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है या बहुत ज्यादा यूजफुल भी नहीं होता है. वो उसको हम लोग किस तरह से शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जैसे कि डीप वर्क में बताया गया है कि वी हैव टू सेग्रीगेट बिटवीन द सैलो वर्क एंड द डीप वर्क. मैं इसमें इस किताब को मैं पढ़ा भी हूँ, तो इसमें इसमें जो कार्ल न्यूपोर्ट जो लेखक हैं उन्होंने बताया है कि वो कैसे जो है जब भी उनको बुक लिखना रहता था तो एक 7-8 दिन के लिए या 15 दिन के लिए कहीं एकांत जगह में चले जाते थे जहां पे उनको कोई कनेक्टिविटी नहीं हो, नेटवर्क नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, इस तरह का कुछ भी नहीं हो, जस्ट एक टेबल हो, एक किताब हो, एक डायरी हो और एक पेन हो, और वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करते थे। तो इस तरह से जब भी आपको डीप थिंकिंग करना होगा तो ये सैलो थिंकिंग को हम लोग को एक शेड्यूलिंग करके कि हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग कम्प्लीटली उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स वी कैन डिफरेंशिएट एंड वी कैन प्रायोरिटाइज व्हाट हैव टू बी केप्ट इन द सैलो वर्क एंड व्हाट हैव टू बी केप्ट इन द डीप वर्क सो दैट वी कीप आवर लर्निंग अपग्रेडेड। तो इस तरह का जैसे कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे मैडम ने बताया कि ये जो सर्विस है, सर्विस स्टेटस जो भी हम लोग करते हैं, जैसे एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एज ए गवर्नमेंट सर्विस जो भी हम लोग करते हैं, तो अगर उसको हम सर्विस मानेंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा इम्पैथेटिक भी होगा। इसको जस्ट मैं रिलेट कर रहा था कि मैं एक साइमन सिनेक, एक जो मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर भी हैं अमेरिकन के, वो जस्ट एक मैं उसको बहुत सारों ने आपने पढ़ा भी होगा, स्टार्ट विथ व्हाई, जो भी आप करते हैं वो क्यों करते हैं, व्हाई यू आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, है ना, जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अनलेस अनटिल वो आपको पता नहीं होगा तो आपको उस काम न करने में उतना रुचि रहेगा और ना आप उस काम को उतने अच्छे से कर पाएंगे। तो उसमें उन्होंने जस्ट एक इंटरव्यू लिया था दो लोगों से, जस्ट ऐसे ही पूछे थे, एक जो एम्प्लॉयर जो समझता है कि हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है और बस उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, और एक दूसरा जो होटल का जो एक रहता है उसमें वो एम्प्लॉयर जो है किस तरह से अपने एम्पैथेटिक वे में उसको ट्रीट करता है। तो एक ने जो जवाब दिया था वो जस्ट आई डू माई वर्क जस्ट फॉर गेटिंग माई चेक, एंड दूसरे ने जो एम्प्लॉयर उसको एक एम्पैथेटिक वे में उसको एक अपना परिवार के सदस्य मानते थे, उसका जो जवाब था आई लव माई जॉब। तो ये डिफरेंस हो जाता है कि जब आप उस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, जब आप अपने सर्विस अपने तो काम को पूरे डेडिकेशन के साथ उसको सर्विस की तरह समझते हैं तो सारे लोग का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है, लगाव बढ़ेगा तो उनका जो नेचुरल है कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, और उसमें क्योंकि उनका उस काम को उसे पूरे मोटिवेशन के साथ पूरे सेल्फ इंस्पिरेशन के साथ कर पाएंगे। तो इस तरह से ये इस बात को मैं रिलेट किया। फिर कई सारे बातें, जैसे एक था सेल्फ अवेयरनेस और कैसे हम जो है सफरिंग्स को, जैसे मैं यहाँ पे कई तरह का देख रहा था कि हाउ टू कन्वर्ट योर सफरिंग इनटू अपॉर्चुनिटी, फिर जो है आप कैसे जो है व्हाट आर यू हु आर यू या आस्किंग फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो मेरे को जस्ट एक याद आया कि मैं पढ़ा था कि कई सारे, जैसे आप लोग भी सभी से इससे वाकिफ होंगे, कई सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे, जैसे सबसे पहले तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन काफी चर्चा में था, फिर लगा कि नहीं, दिस इज नॉट इनफ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज नॉट इनफ, इट इज नॉट गोइंग टू सर्व द पीपुल। तो उसके बाद जो है हम लोग इमोशनल क्वेश्चन को आए, फिर मोरल क्वेश्चन आया, और आज के डेट में सभी लोग का यह मानना है कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन एसक्यू जो है अगर लीडरशिप ट्रू लीडरशिप करना है तो आपको स्पिरिचुअल क्वेश्चन डेवलप करना होगा, और इस स्पिरिचुअल क्वेश्चन में जो सारे ये अभी बता रही थी वो सारे हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन के जनरली 8 जो है मैं पैरामीटर्स पढ़ा था, उसमें था कि सेल्फ अवेयरनेस जो कि खुद दीदी जी बता रही थी कि आपको अपने बारे में जानना है, एबिलिटी टू नो अबाउट आस्किंग फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ लाइफ, जैसे कि हम लोग सभी अब जैसे मुझे इस पूरे वर्ल्ड में संजीव के नाम से जानते हैं, बट आई माई सेल्फ डोंट नो हु आई एम, इज इंट इट, सो मैं कौन हूं, दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ लाइफ, तो इस तरह का क्वेश्चन, फिर एक्सट्रीम जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, सफरिंग को कैसे जो है अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर कनेक्टिंग डॉट्स जो जो आप जो इसमें जो जो डिफरेंट डाइवर्स पॉइंट्स होते हैं उसको किस तरह से कनेक्ट कर कर करके आप चीजों को देखते हैं एक एक जगह, वो इस सारे का एक ये होता है। फिर उसके बाद है कि गोइंग एबिलिटी टू सी द गोइंग अगेंस्ट द कन्वेंशन, फिर इंस्पिरेशन बाय विजन, तो ये सब सारे चीजें जो है, तो जैसे एबिलिटी नॉट टू हर्ट, टू डू मिनिमम हार्म टू द टू एनीबॉडी, दिस इज ऑल्सो इन एट वन ऑफ द एट पैरामीटर्स ऑफ द स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो ये मुझे सभी कुछ रिलेट होकर के आ रहा था कि यहाँ मैं यहाँ पे सारे बहुत सारे पोस्टर भी देख रहा था कि यहाँ पे सिखाया जाता है कि किसी को हार्म नहीं करना है, सेल्फ अवेयरनेस करना है, अपना सफरिंग तो रहेगा, जिंदगी है, उसको बोलते हैं ना कि अगर आपका लाइन अगर स्ट्रेट हो गया तो यू आर डेड, तो लाइन तो हमेशा जो है साइनसोइडल रहेगा, उसको आप नहीं ये इफ लाइफ है तो परिस्थितियां बदलती रहेगी, कभी आप अच्छे समय के भी भागीदार होंगे, कभी बुरे समय भी आएंगे, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन सफरिंग को हमारे प्रधानमंत्री भी जी जो एक मैं इसको बोल सकता हूं कि एक जीता जागता एक एग्जाम्पल है माननीय प्रधानमंत्री जी की, हाउ ही हैज कन्वर्टेड हिज सफरिंग इनटू अपॉर्चुनिटी एंड ही इज नाउ द सुप्रीम पावर, सुप्रीम द मेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारे चीजें जो है, तो मैं एक जस्ट इसको रिलेट कर रहा था। तो यहाँ पे मैं दो दिन आए हुए हैं, परसों मैं आया था, मैं यहाँ आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन गिवन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ यू, एंड यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही पॉजिटिव मुझे लग रहा है, और इतने सारे ज्ञान की बातें मैं कल से सुन रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग इनरिच्ड एवरी डे, एवरी मोमेंट आई शुड से, कि मुझे हर एक पल एक नया एक, आज सुबह से मैं करीब 3:30-4 बजे उठा था, और हालांकि मैं पहले जनरली जो है 5 के बाद या मोस्टली 6 के आसपास ही उठता हूँ, तो 2 दिन से ये मेरा पूरा रूटीन एक तरह से चेंज हुआ है, विच आई एम फीलिंग वेरी, मुझे अच्छा भी लग रहा है और आई एम फीलिंग मच मोर इनर्जेटिक ऑल्सो और मच मोर पॉजिटिव ऑल्सो। तो ये यहाँ का एक जो पॉजिटिव इकोसिस्टम है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, वो मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम है, और हम लोग अभी तो जस्ट 2 दिन हुआ है, कल हम लोग का इनॉग्रेशन था, एक मैडम का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, धनलक्ष्मी मैडम, उन्होंने बहुत अच्छा, वो भी मुझे कहीं पढ़ा था कि विजडम इज द स्टेट बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, ये कहीं का था, मैं भी एक किस कहीं पे मैं आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द बुक विच आई हैव रेड दिस लाइन, बट दिस इज ऑल्सो मतलब जो हम लोग अगर उस स्टिमुलस को, उस पीरियड को अगर हम लोग कंट्रोल कर लें तो हमारा डिसीजन बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम लोग जनरली कुछ भी जो होता है, कुछ भी अगर सिचुएशन आता है तो हम लोग उसको रिएक्ट करते हैं, और वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच है, अगर जितना वही एक ये है एबिलिटी है या स्किलफुलनेस है, माइंडफुलनेस जो बता रही थी, कि उसको हम लोग कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना अगर स्ट्रेच कर सकते करेंगे, जितने हमारे स्किल डेवलपमेंट अगर होगा उस पीरियड को स्ट्रेच करने में, मुझे लगता है कि हम उतना बेटर डिसीजन ले पाएंगे, उतना कूल डिसीजन, कूल एंड कंपोज डिसीजन ले पाएंगे, और वो सबों के लिए हितकारी भी होगा। तो ये कई सारे जो है, कल कई वक्ताओं से और आज वीना दीदी से और शोभा दीदी से जो जानकारी या जो नॉलेज हम लोग को जो मिल रहा है, आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई फील दैट यू ऑल ऑफ यू मस्ट बी अप्रिसिएटिंग, एंड जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट वी विल लर्न अ लॉट from this holy atmosphere, and we will thankful to all of you and we will remain grateful for the Brahma Kumari organization, and we'll try to visit this organization more and more so that we can get as much knowledge as so that we can also do service for the people of the nation. Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजीव भाई जी को. आपने अपने अनुभव हम सभी के बीच रखे. अभी मैं आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि भाई जी को ईश्वरी सौगात व टोली देकर सम्मानित करेंगे. परमात्मा के घर से आप बहुत लकीस्ट हैं हमारी दीदी जी. आपको सम्मानित कर एक बार जोरदार तालियों से. और बाबा के घर से आपको टोली भी मिल रही है जी. बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका. अभी मधुबन के रमेश भाई जी से अनुरोध करेंगे कि वो एक बहुत सुंदर बाबा का गीत हम सभी के बीच में रखेंगे.
ओम शांति. सभी बोलेंगे एक बार ओम शांति. आदरणीय वीणा दीदी से बहुत सुंदर बात हमने सुने कि परमात्मा को याद कैसे करना है और याद करने से हमारे अंदर क्वालिटी क्या आएगी. इन्हीं भाव को लेते हुए ये गीत है, क्योंकि आज संसार हर मनुष्य चाहता है कि परमात्मा को याद करे अंतिम सांस तक. तो ये गीत में हमने लिखा है कि जब तक सांस चलती रहे तेरी याद में रहना है. आप सभी तालियों के साथ इस गीत को गाइएगा मेरे साथ. सांसे चलती रहे तेरी याद में रहना है. जब तक सांसे चलती रहे तेरी याद में रहना है. नैनों में तस्वीर तेरी लबों पर बाबा बाबा. दिल में तेरा प्यार लहराए हाथों से तेरी सेवा. मन मेरा ये कहता है तेरे रंग में ही रंगना है. जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है. सभी परमात्मा की याद में खुशियों के साथ, क्योंकि परमात्मा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करना है. सभी ताली बजाए.
दिल को मिलता इतना आराम एक तुम ही हो मेरे दिल आराम. दिल को मिलता इतना आराम एक तुम ही हो मेरे दिल आराम. दिल की बातें होती तुमसे सुबह हो या हो सुहानी शाम. सुबह हो या हो सुहानी शाम. नैनों में तस्वीर तेरी लबों पर बाबा बाबा. दिल में तेरा प्यार लहराए हाथों से तेरी सेवा. मन मेरा ये कहता है तेरे पास ही रहना है.
जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। आप सभी बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं भगवान के घर में पधारे हैं। मिलने अब तो हम नदियां बन के बह चले, ओ सागर से मिलने अब तो हम नदियां बन के बह चले। इतनी मोहब्बत है तुमसे, तेरी यादों से लाखों दिए जले, तेरी यादों से लाखों दिए जले। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा बाबा, दिल में तेरा प्यार लहराए, हाथों से तेरी सेवा। मन मेरा ये कहता है तेरे गुणों से ही सजना है। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। हर दिल की आवाज कि परमात्मा की आवाज मेरी आवाज हो और उसकी यादों में खोए रहना है। एक तुम ही हो मेरी दुनिया, तुमसे मिलती इतनी खुशियाँ। एक तुम ही हो मेरी दुनिया, तुमसे मिलती इतनी खुशियाँ। मीठी मीठी यादों में तेरी महकी है जिंदगानियाँ, महकी है जिंदगानियाँ। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा बाबा, दिल में तेरा प्यार लहराए, हाथों से तेरी सेवा। मन मेरा ये कहता है अब तुम सा ही बनना है। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। सभी बोलिए एक बार, जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है, तेरी याद में रहना है, तेरी याद में रहना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी को, बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति आपने दी और हम सभी को परमात्मा की याद दिलाई। और आप सभी का आज आपने सेशन अटेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और हमारे अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद बहुत सुंदर और सेशन भी आगे आपके कंटिन्यू रहेंगे, तो उसको भी आप एंजॉय करिएगा। अभी 2 मिनट परमात्मा की याद में हम सभी बैठेंगे।